اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چنے ہوئے شخص تھے اور رسول اور نبی تھے، ہم نے اس کو طور کے دائیں جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کے مددگار کے طور پر دیا، اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ اب پھر خوبصورت کردار، ایک کردار ہمارے پاس آج مریم علیہ السلام ہے تو دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ذرا سے اس کو نظر میں رکھ کے پڑھیے گا۔ وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیا اسماعیل نے پڑھ لی ہوگی، بچوں نے، ان کو نہیں پتا، اب میں کیوں حکم دوں؟ آج ہم جب بچوں کو نماز کی بات کرنے کی بات کرتے تو ان کو نہیں پتا، عقل ہے ان کو، ہوش ہے، خود پڑھ لیں گے۔ آپ کو تو ابھی تک نہ صحیح طرح عادت ہوئی تو ان کو ابھی سے کیسے ہو؟ یاد رکھیے ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے، بچپن ایسی چیز ہے۔ آج بڑے بڑے علماء کرام کی آپ ذرا سپیچز سنیں، وہ بچپن میں بھی ماں باپ کے ڈر سے پڑھتے تھے، روتے دھوتے پڑھتے تھے۔ ہماری نمازوں میں کہاں خشوع تھا، بس پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اتنا پتا تھا نہ پڑھی تو کافر ہو جائیں گے، دیٹس اٹ۔ وقت کے ساتھ یہ شیرینی آتی ہے تو کہنا پڑے گا، پیار سے بال سہلاتے ہوئے حضرت اسماعیل نے اگر کہا تو کیا میں اور آپ نہیں کہیں گے؟ اور اسماعیل کے بچوں کو اگر حکم کی ضرورت ہی نماز کے، تو میرے آپ کے بچے کو نماز کے حکم کی کوئی ضرورت نہیں؟ وہ اتنے پارسا اور اتنے نیک ہے کہ وہ بس ایسے ہی پڑھ لیں گے؟ نہیں، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیوں ہوا؟ پارے کا تھیم یاد رکھیے، جب اسماعیل علیہ السلام خود بیٹے تھے تو کیسے تھے، یہ آگے ہم سورۃ صافات میں پڑھیں گے۔ یا بت فل مات عمر، ابا جی کر لیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، کہ باپ کے سامنے چھری چلانے کے لیے گردن بھی تیار کر دی۔ تحفہ کیا ملا؟ اللہ نے نیک اولاد دی، اپنی فکر کریں۔ آج یہ اصول پٹی کی طرح پڑھ کے جائیں، بچوں کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت، بچوں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح۔ جو بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود کو دکھائیں، بس سیدھی سی بات ہے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راس پاس انسان اور ایک نبی تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ اپنے ایک ایک پیارے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہائی لائٹ کیجئے گا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ ہیں وہ پیغمبر جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کیا انعام تھا جی؟ لینڈ کروزر لے دی ان کو، 1000 گز کا بنگلہ دے دیا، ان کے بچے ہائیلی کوالیفائیڈ ہو گئے۔ ان کے انعام کیا تھے؟ کہ اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے چن لیا۔ اللہ ہمیں بھی چن لے۔ آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور ابراہیم کی نسل اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیتیں ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ کون روتا ہے قرآن سن کر؟ جس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی خشوع اور خضوع دے۔ پھر اس کے بعد وہ نااہل لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ ہائی لائٹ کریں، نبیوں کی نسل میں سے ناخلف پیدا ہو گئے، اور پہلی چیز جو ان سے نکلی وہ نماز نکلی، اور دوسری جو آئی وہ کیا آئی؟ اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ اور یاد رکھیں، خواہش نفس کی پیروی اور نماز ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ شادی کے دن دلہن نماز تبھی پڑھے گی جب خواہش نفس پہ قابو پائے گی۔ ہر نماز ہماری کسی نہ کسی خواہش کا امتحان ہوتی ہے، کبھی نیند چھوڑنی پڑتی ہے، اور کبھی کھانا چھوڑنا پڑتا ہے، اور کبھی کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کے راستے کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بعض دفعہ اپنی نمازوں کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، سوچے، کوئی گالیاں نہیں دے گا، شاؤٹنگ نہیں کرے گا، چیخے گا نہیں۔ کیسے؟ جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق بھی انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ اپنے گھر کا سکون اور ماحول یاد کیجیے، आज यहाँ अगर आपकी पसंद के खिलाफ कुछ चीज़ें हो भी रही हैं ना, तो अल्लाह ताला वहाँ इसे इंशाल्लाह आज़ाद कर देगा। अल्लाह दुनिया में भी हमारे घरों को पुरसकून कर दे। ऐ नबी, हम तुम्हारे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान है, हर चीज़ का मालिक वही है और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं। वो रब है आसमान और ज़मीन का और उन सब चीज़ों का जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। बस तुम उसकी बंदगी करो और उसी की बंदगी पर साबित कदम रहो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे इल्म में इसकी हम पाया? जानते हैं किसी को उस इतने प्यारे नाम वाला? अल्लाह, रहमान, अर रहीम, अल मालिक, अल कुदूस। अल्लाह कहते मेरे नाम जैसा भी किसी का नाम है। कितना प्यारा अंदाज है अल्लाह की मोहब्बत दिलाने वाला। लेकिन इसके बारक्स इंसान फिर भी ना शुक्र है। वह यकूल इंसान वाइजा मा मित लसोफ खरजु हैया। इंसान कहता है क्या वाकई जब मैं मर चुकूंगा तो फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले इसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी ना था? तेरे रब की कसम, हम जरूर इन सब को और इनके साथ शयातीन को भी घेर लाएंगे, फिर जहन्नुम के गिर्द ला कर इन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे। सूरत मरियम में झुकाने की बहुत बात आ रही है। झुक जाओ, घुटनों के बल गिरेंगे। दुनिया में तकब्बुर रहा, वहां ये नहीं होगा, वहां झुक जाएंगे। फिर हर गिरोह में से हर उस शख्स को छांट लेंगे जो रहमान के मुकाबले में सबसे ज्यादा सरकश बना हुआ था। फिर ये हम जानते हैं कि इनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नुम में झोंके जाने का मुस्तहिक है। अस्तगफिरुल्लाह। तुम में से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नुम पर वारिद ना हो। ये तो एक तयशुदा बात है जिसे पूरा होना तेरे रब का जिम्मा है। फिर हम इन लोगों को बचा लेंगे जो दुनिया में मुत्तकी थे और जालिमों को इसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। पुल सरात का तस्करा है। पुल सरात क्या है? जहन्नुम के ऊपर एक पुल है। जन्नत में जाने वालों को भी इसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। वाइम मिन कुमिल्ला वारिदुहा। आज हम इस आयत को पढ़ते हैं और ऐसे ही गुजर जाते हैं, हालांकि हमारे असलाफ का और खास तौर पर सहाबा किराम का अमल क्या था? इस आयत पे पहुंचते तो क्या करते? अब्दुल्ला बिन रवाहा सहाबी रसूल थे, अपनी बीवी के पास बैठे थे, सर उनकी गोद में था तो रोने लगे। बीवी भी रोने लग गई। कहने लगे तुझे क्या हुआ? कहने लगी आपको रोता देखकर मैं भी रो पड़ी। कहा मुझे तो कुरान की आयत ने रुला दिया कि वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि तुम में से हर एक को पुल सरात के ऊपर से गुजरना है। मैं तो ये सोच के रो पड़ा। कभी हमारी भी ये सोचे हैं? इसी तरह अबू मैसरा बिस्तर पर सोने के लिए लेटे, करवट ली तो रोने लगे। फिर कहने लगे काश मुझे मेरी माँ ने जना ना होता। पूछा क्यों, आप अपने आप को क्यों कोस रहे हैं? कहा इसलिए कि हम में से हर एक को जहन्नुम के ऊपर से तो गुजरना है, पर ये नहीं बताया कि हम वहां से बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पुल सरात रखो। फरिश्तों ने पूछा अच्छा कैसे? फरमाए उस्तरे की तरह का तेज धार वाला पुल रखा गया, फिसलने वाला और टेढ़े मेढ़े कांटे लगे हुए उसके इर्द गिर्द, आंकड़े, क्लूब कहते हैं उसको। फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह तू इसमें से किसको अबूर कराएगा? इतना खतरनाक, इतना खौफ, इतना स्लिपरी। अल्लाह ने फरमाया अपनी मखलूक में से जिसको चाहूंगा। ये बात सुनकर फरिश्ते कहने लगे सुबहानका, पाक है तू और हम तो तेरी इबादत का हक अदा ही नहीं कर सके। घबरा गए। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जहन्नुम पर अल्लाह एक पुल रखेगा जो इतनी गहरी है कि अगर कोई जहन्नुम की तह में गिराया जाए तो 70 साल में उसकी तह में पहुंचेगा। आप और मैं इस पुल सरात के बारे में कितना को जानते हैं और कितना को हमें इससे खौफ है? एक और हदीस है आज की अहादीस में से, यही हदीस, जरा से इस पे गौर करें। बिल्कुल इस वक्त आप अपने आप को जहन्नुम के ऊपर सोचें और याद रखिए जहन्नुम के ऊपर ये पुल सरात जो है ना, ये किस्म का डायसेक्शन रूम है। सब गंदा खून वहां नुचड़ना है, वहां सब गंदी बातें, गंदे दिल के ख्यालात, इरादे, आंखों की गंदगियां वहां जाके खुलनी है। अल्लाह ताला में दुनिया में ही पाक कर दे। हदीस है नबी सल्लम फरमाते हैं मैं सबसे पहले इस पुल के पार हो जाऊंगा, यानी आप सबसे पहले गुजर जाएंगे। इस दिन पैगंबर भी यही दुआ करेंगे या अल्लाह बचाइयो, या अल्लाह बचाइयो। इस पुल पर आंकड़े होंगे, कांटे, इस सूरत के जैसे सादान के कांटे होते हैं। तुमने सादान के कांटे देखे हैं? साहबा ने अर्ज किया, जी हाँ देखे हैं। आपने फरमाया, बस इसी सूरत के टेढ़े मुंह के दोजख के आंकड़े होंगे। इतनी बात है कि ये आंकड़े कितने बड़े बड़े होंगे ये अल्लाह को मालूम है। खैर, ये आंकड़े लोगों को पकड़ पकड़ कर इनके अमाल के लिहाज से दोजख में घसीट लेंगे। कोई तो बिल्कुल ही हलाक हो जाएगा और कोई छलांग लगाकर गिरते गिरते बच जाएगा। बुखारी की रिवायत है। और इसका ज्यादा मंजर हम पढ़ेंगे सूरत हदीद में। गिर गिर के, कट कट के लोग उस पुल सरात से गुजरेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे बचा के रखे। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत करे। आज की दुआ पढ़े, रब्बना तीना मिल लदुनका रहमत व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। सब मिलके पढ़े। असहाबे कहफ की ये दुआ है, हमारे परवरदिगार हमको अपने पास से रहमत का सामान अता फरमा और हमारे लिए इस काम में दुरुस्ती का सामान मुहैया कर दे। इस वक्त इस सोच से पढ़िए कि अल्लाह हमें पुल सरात से खैर और आफियत से गुजारते और इसको आसान कर देना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिल को बदल दे। आप देखिए कितने मुश्किल मरहले हम सब के सर पे खड़े हैं और हम बैठे हुए इसी तरह। तो आज की टाइम मैनेजमेंट की टिप नोट करें, बच्चों को नमाज का कहना है। अब से लेके कल तक की आने की नमाजें जो भी 5 हैं, कह दीजिए उनको हमें होमवर्क मिला है। उठो मेरे बच्चे, प्यार से कहना कैसे है थोड़ा सा समझिए। देखिए मिसाल है, मैं एक दफा आपसे कहूँ बेटा उठो नमाज पढ़ो, और मेरा ये जुमला को रिकॉर्ड कर ले, फिर इसको कॉपी एंड पेस्ट करें, तो 10 दफा ये जुमला बोले, कैसे बोलूंगी जिस तरह पहले बोली? बेटा उठो नमाज पढ़ो, बेटा उठो नमाज पढ़ो, बेटा उठो नमाज पढ़ो। सेम टोन होगी ना, तो 10वीं दफा भी सुनकर किसी को बुरा नहीं लगेगा। हम अमूमन क्या कहते हैं? उठो नमाज पढ़ो, उठो, सुनते नहीं। हमारी टोन बदलती जाती है, ये नहीं बदलती। 10 दफा भी कहें तो प्यार से, मोहब्बत से, गुदास से। और किसी का अमल मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि किसी के घर गए हुए थे, दीनदार लोग थे, यही बात तय हुई कि सुबह फजर पे सब उठेंगे, तो सुस्ती थी नहीं उठे। तो कहते हैं कि मुझे नींद में महसूस हुआ कैसे, कोई मेरे पाँव को हाथ लगा रहा है। कहते जब आँख खुली देखी तो जो मेरा मेजबान था वो मेरे पाँव दबा रहा है। उठिए ना नमाज पढ़ लें। क्या ऐसे आप और मैं नहीं कर सकते अपने बच्चों को? एक दिन जुटलाएंगे ना, ख्याल नहीं आएगा ये माँ को क्या हो गया, आधी रात को हमारे पाँव दबा रही है। उठ मेरा बच्चा नमाज पढ़, प्यार से कहिए। हम कहते हैं डंडे के जोर पे, पहले दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं देते, बाद में दूसरी तरफ आ जाते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे बचाए। आगे चलते हैं। इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयात सुनाई जाती है तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों गिरोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिसें ज्यादा शानदार हैं। यहां रुकिए। जब माओं की दौड़ धूप इस पे चली जाती है ना कि मैंने अपने घर को संवारना है, मैंने अपने घर को सजाना है, मेरी पार्टी कैसी, तो फिर याद रखिए औलादों के लिए वक्त नहीं बचता। आज की हमारी टाइम वेस्टर टिप भी यही है कि अपने घर से फालतू चीजों को निकाल दें। बेकार सामान, बेकार फर्नीचर जमा करना, उसको संवारना, उसको साफ करना, उन चीजों को रहना और बच्चों से गाफिल होना, ये आज की माँ की जो हालत है। तो अपने घर से फालतू चीजें निकालें, खरीदनी नहीं है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज ना रखें कि जो आपका और आपके बच्चों का क्वालिटी टाइम ले ले। आपके बच्चे आपके मोती हैं, हीरे हैं, खाना पकाएं उनके लिए, कपड़े धोएं दिलाएं, बेसिक्स पे रहे। इसके अलावा घर में हर वो चीज नजर में रखें कि जो आपके बच्चों को टाइम नहीं आप दे पाती। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका हल्का फुल्का सा घर और आपकी कम मसरूफियात आपको बच्चों से जोड़ देंगी। साथ बैठें, हर बच्चे को वक्त दें। अगर आप चाहती हैं कि वो आपकी बात माने तो मोहब्बत से दें, वरना याद रखिए सफेद कुशन को हाथ में लेने पे बच्चे को आपसे डांट पड़ गई, वो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। हम घर से जाते हैं बेजान चीजों से, हमारे दिल भी बेजान हो गए और ये घर हमारे बुत बन जाते हैं। बेरूह घर हैं वो, जो सामान से भरे पड़े हैं और घर के लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते। जो हमारे सोफों से मिलने आते हैं वो मिलके चले जाएं, जिनको हमारे पर्दे चाहिए वो पर्दों को ले ले। असल बात है कि हमारे घर शोपीस नहीं होने चाहिए। जरूरत का कंफर्ट का रखिए और बाकी वक्त अपनी औलादों को दीजिए। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे। आयत 73, व इजा तुतला अलैहिम आयातुना बैयिनात, इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयात सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों गिरोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिसें शानदार है। यही देखते रहते हैं, किसकी कोठी बड़ी, किसकी गाड़ी बड़ी। हालांकि इनसे पहले हम कितनी ऐसी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ज्यादा सरो सामान रखती थी और जाहरी शान और शौकत में इनसे बड़ी हुई थी। इनसे कहो, जो शख्स गुमराही में मुबतला होता है इसे रहमान ढील दिया करता है, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज देख लेते हैं जिसका इनसे वादा किया गया, ख्वाह वो अजाब इलाही हो या क्यामत की घड़ी, तब इन्हें मालूम हो जाता है किसका हाल खराब है और किसका जत्था कमजोर है। इसके बरक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं, अल्लाह इनको रास रवि में तरक्की अता फरमाता है और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नजदीक जजा और इंजाम के एतबार से बेहतर है। फिर अल माल वल बनून नज़ीनतुल हयात दुनिया को याद कर लें, अपने बच्चों को बाक़ियातुस सालिहात में बदलें। मेरे घर की कौन कौन सी चीज मेरे साथ जाएगी? सब इधर रह जाएगा, मेरी औलाद साथ जाएगी, उनकी तरबियत करें। फिर तूने देखा उस शख्स को जो हमारी आयात को मानने से इनकार करता है और कहता है मैं तो माल और औलाद से ही नवाजा जाता रहूंगा, क्या इसे गैब का पता चल गया या इसने रहमान से कोई अहद ले लिया? इधर भी नोट करें, सेम थीम है। माल और औलाद का नशा बहुत बड़ा नशा होता है, अकड़ आने लगती है। मैं 6 बेटों की माँ हूँ, 4 बच्चों की माँ हूँ, उन्हीं के खाने पीने परोने सीने में पड़े रहते हैं और रब को नाराज कर देते हैं। हरगिज़ नहीं, जो कुछ ये कहता है हम इसे लिख लेंगे और इसके लिए सजा में और इजाफा करेंगे। जिस सरो सामान और लाओ लश्कर का ये जिक्र कर रहा है वो सब हमारे पास रह जाएगा। वो माँ याद आ गई जिसकी 19 साल की बेटी की डेथ हो गई, अकलौती बेटी, और जब वो मुझे मिली तो शायद साल हो चुका था। कहती मैंने उसके कमरे की कोई चीज़ नहीं छेड़ी, वो जूती भी वहीं पड़ी है जो पहनी हुई थी, वो कपड़े भी वहीं पड़े, क्या फायदा? उसको दीजिए, उसका सदका जारिया बनाए, वो बुत बना के कपड़े क्यों लटकाए हुए हैं? इसीलिए अल्लाह कहता है वो सब इधर रह जाएगा और ये अकेला हमारे सामने हाजिर होगा। बिल्कुल दिल को खाली करने वाली आयतें। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने कुछ खुदा बना रखे हैं कि वो इनके मददगार होंगे, कोई मददगार ना होगा। वो सब इनकी इबादत का इनकार करेंगे और उल्टे इनके मुखालिफ बन जाएंगे। क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने मुनकरीन हक पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो इन्हें खूब खूब मुखालफत हक पर उकसा रहे हैं? अच्छा तो अब इन पर नजूल अजाब के लिए बेताब ना हो, हम इनके दिन गिन रहे हैं। वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान के हजूर पेश करेंगे। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल करें और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह जहन्नुम की तरफ हांक कर ले जाएंगे। इस वक्त कोई सिफारिश लाने पर कादिर ना होंगे सिवाय इसके जिसने रहमान के हजूर से इजाजत हासिल कर ली हो। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को जहन्नुम से आजाद करके जन्नत में दाखिल करवा दे। वो कहते हैं रहमान ने किसी को बेटा बनाया है, सख्त बेहुदा बात है जो तुम लोग घड़ लाए हो। करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाए इस बात पर कि लोगों ने रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया। रहमान की ये शान नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए। जमीन और आसमान के अंदर जो भी है सब इसके हजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। हमें औलाद क्यों चाहिए? कि हमारे बाद हमारा नाम रहे, कुछ सदका जारिया हो, बुढ़ापे में काम आए। अल्लाह को क्या जरूरत, वो तो हमेशा है और हमेशा से रहेगा। असल बात यह है कि ये बात कहकर लोग अल्लाह के साथ झूठ बांधते हैं। जमीन आसमान में जो भी हैं वो सब इसके हजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सब पर वो मुहीत है और इसने इनको घेर रखा है। सब क्यामत के रोज फर्दन फर्दन इसके सामने हाजिर होंगे। यकीनन जो लोग ईमान ले आए, अल्लाह हमें ईमान वाला कर दे और अमल साले कर रहे हैं, अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। अन करीब रहमान इनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। इसको हाईलाइट करें। आप अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाएं, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। वही हदीस है जिब्रील, याद रखें, आसमानों पे मोहब्बत, फिर जमीन पे मोहब्बत। तो मोहब्बतों का सोर्स क्या है कि मोहब्बत बांटने वाले से मोहब्बत करने लग जाएं। पस ए नबी, इस कलाम को हमने आसान करके तुम्हारी जुबान में इसीलिए नाजिल किया कि तुम परहेजगारों को खुशखबरी दो और हट धर्म लोगों को डराओ। इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, फिर आज कहीं तुम इनका निशान पाते हो। उनकी भिनक भी कहीं सुनाई देती है। कभी आपने सुना कौम आद का कोई शख्स, और कौम समूद का, और कौम लूत का? कुछ भी तो नहीं है। तो सूरत किस पैगाम पे खत्म हुई? अल्लाह का खौफ लाओ। यही खौफ सिराते मुस्तकीम पे तेजी से भगाएगा, और यही कल पुल सरात से हमें खैर और आफियत से गुजारेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें क़यामत के दिन रुसवा न करें। अगर आप देखें तो इस हिस्से में से आयात तदब्बर हमारी यही थी, वाइम मिन को मिल्ला वारी दुहा। पुल सरात को आज सोचते हुए जाइएगा। अगली सूरत बड़ी प्यारी है। फिर रिश्तों की बात कर दूं पहले से, ये वो सूरत है कि जो एक बहन ने एक भाई को पढ़ के सुनाई थी और भाई का दिल बदल गया था। बहन का नाम फातिमा था और भाई का नाम उमर था। आपने मैंने भी ऐसी बहनें बनना है जो अपने भाइयों की हिदायत का जरिया बने। ये रिश्तों की मोहब्बत बड़ी खूबसूरत होती है, तो अपने इन रिश्तों को कैश करवाएं। मोहब्बत है ना बहन भाइयों की, अपने भाइयों को अपनी मोहब्बत के जोर पे नमाजी बनवाएं और नेकियों की तरफ बुलवाएं, और यही मोहब्बत हर रिश्ते में ले जाएं, क्योंकि मोहब्बत फातहे आलम। यहाँ पे रुकेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तुबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين। السلام عليكم ورحمه الله وبركاته।